कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पुराने नियम में पाई जाने वाली पुस्तक रूत का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस पुस्तक के अध्ययन से अवश्य आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। प्रभु की आशीषों को यूं ही प्राप्त करते रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम सत्यवचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ जो पहली बार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम रूत और बोआज के प्रेम कहानी को देख रहे हैं और विशेष करके इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के छुटकारा होने के बारे में सीख रहे हैं। तो आइए हम अपने अध्ययन में आज आगे बढ़ते हैं और रूत की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, उसकी सास नौमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो। मेरे मित्रों, कटनी के संपूर्ण समय नौमी रूत और बोहज को बैतलहम में एक साथ आते देखती रही और लगभग 6 सप्ताह हो गए हैं और अब जौ और गेहूं एकत्र किया जा चुका है। नौमी देख रही है कि रूत अपनी मर्यादा में है और बोआज पर दावा नहीं कर रही है और वह यह भी सक्षम है कि बोआज उससे प्रेम करने लगा है। अतः नौमी रूत से पूछती है कि क्या वह उसके लिए ठाव ढूंढे अर्थात विवाह का प्रबंध करे। मेरे मित्रों, आपको याद होगा कि नौमी ने मोआब में ही अपनी बहुओं से कहा था कि वे पुनर्विवाह करके शांति पाएं। अतः वह अब भी रूत के लिए चिंतित है। तब हम रूत की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। मेरे मित्रों, उसने रूत को बताया कि बोआज उसका कुटुंबी छुड़ाने हारा है, अतः वह उस पर दावा कर सकती है। तब उसने रूत को समझाया कि उसे क्या करना है। आइए देखें रूत की पुस्तक 3 अध्याय के 3 पद में, तू स्नान करके तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। ध्यान दीजिए, उसने रूत से कहा कि धार्मिक उत्साह समाप्त होने तक वह प्रतीक्षा करेगी। नौमी ने रूत से कहा, अब तेरे हाथ में है कि बोआज को तू कुटुंबी छुड़ाने हारा बनाएगी या नहीं। मेरे मित्र, अब तक रूत इस विषय में कुछ नहीं कर पा रही थी, अतः नौमी को उसे विशेष निर्देशन देने पड़े। उसने उसे 4 काम करने को कहे। मेरे विचार में यह मसीह की शरण आने वाले पापी का परिदृश्य है। ये 4 चरण पापी के लिए आवश्यक हैं। पहला है स्नान करना। यदि आप और मैं मसीह के पास आना चाहते हैं तो तीतुस की पुस्तक 3:5 पद में लिखा है, धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। मेरे मित्रों, यही कारण है कि यूहन्ना 3:7 पद में प्रभु यीशु ने निकुदिमुस से कहा था, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तू निसंदेह एक उत्तम धर्मी जन है, परंतु तुझे स्नान की आवश्यकता है, आत्मिक स्नान की। तुझे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, यदि आपको स्वर्ग के योग्य बनना है तो आपको नए जन्म का अनुभव होना आवश्यक है। किसी ने जॉन वेस्ली से पूछा कि वह सदैव तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है पर ही प्रचार क्यों करता है। उसने कहा, मैं आपको बताता हूँ, इस विषय पर मेरे प्रचार करने का कारण यह है कि आपको नया जन्म लेना आवश्यक है। मेरे मित्रों, न तो आप स्वर्ग जा सकते हैं और न आप उद्धार पा सकते हैं यदि आप मसीह यीशु में नई सृष्टि नहीं बने हैं। मैं और आप नया जन्म पाए बिना स्वर्ग के योग्य नहीं हैं। पवित्र आत्मा द्वारा नई सृष्टि बने बिना स्वर्ग में हम नहीं जा सकते हैं। अतः नौमी ने रूत से कहा, तू खेत में काम करती रही, इसलिए स्नान कर। यह पहला काम था जो उसे करना था। अब है दूसरा काम जो नौमी ने रूत को करने के लिए कहा, वह था तेल लगा। मेरे विचार में पति के मरने के बाद रूत ने अपने रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया था। अब क्योंकि नौमी ने देखा कि रूत में कोई पुरुष रुचि ले रहा है, तो उसने कहा कि वह मोआब में मध्य रात्रि नाम का इत्र जो यूं ही रखा है काम में ले। वह एक बाहर का इत्र था, अतः नौमी ने कहा उसे लगा। मेरे मित्रों, यह हमारे मसीही व्यवहार का प्रतीक है। परमेश्वर की संतान बनने पर हम शिशु अवस्था में होते हैं और दिव्य सत्य को समझने के लिए विकसित भी हो जाते हैं। हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा द्वारा किया जाता है। हम पहला योना की पत्री अध्याय 2 उसके 20 पद में स्पष्ट रूप से देखते हैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। कहने का अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा ही है जो हमें सत्य का प्रकाशन प्रदान करता है और हम सबको पवित्र आत्मा की शिक्षा की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, यही इस संसार में एकमात्र मार्ग है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा ही हमें सिखाए। आज इसको अनदेखा किया जाता है। आज बहुत सारे धर्म विज्ञान के क्षेत्रों में वे आत्मा की प्रेरणा के विषय वाद विवाद में लगे हैं। यह जानना है कि बाइबल परमेश्वर का प्रेरित वचन है या नहीं, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, आप धर्मशास्त्र के शाब्दिक समग्र प्रेरणा में विश्वास रखते हुए भी परमेश्वर के वचन के अज्ञानी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस पुस्तक को मानवीय बुद्धि के आधार पर नहीं समझ पाएंगे। यदि आप इसके तथ्यों को समझे तो आप केवल कुछ बौद्धिक विषयों को ही अंतर्ग्रहण कर पाएंगे, परंतु आत्मिक बातें आपको केवल परमेश्वर का आत्मा ही समझा सकता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9 से 10 पद में पौलुस कहता है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। परमेश्वर का आत्मा हमें सत्य का ज्ञान प्रदान करता है और सत्य के मार्ग पर लेकर ही हमें चलता है। मेरे मित्रों, पवित्र आत्मा को हमारा शिक्षक बनाना कैसा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। हमें यह समझ लेना है कि नया जन्म पाने पर हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होता है, और यही बात पहला योना की पत्री 2 अध्याय उसके 27 पद में भी कहा गया है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। मेरे मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मानवीय शिक्षक एवं शिक्षा का त्याग कर दें। आप और मैं पूर्व समय के भक्त जनों की आत्मा प्रेरित शिक्षा के लाभ उठाने वाले हैं। परमेश्वर ही कलीसिया को शिक्षा प्रदान करता है, परंतु न तो पूर्व समय के शिक्षक और न ही शिक्षा का भंडार आपको ज्योतिर्मय कर सकता है यदि पवित्र आत्मा आपका शिक्षक न हो। अतः रूत का दूसरा चरण महत्वपूर्ण था। उसे पहले स्नान करना था, फिर तेल से अभिषेक करना था। आइए अब हम देखते हैं तीसरा चरण, अच्छे वस्त्र पहनना। मेरे विचार में नौमी ने उसे कहा होगा, रूत तेरे पास वह जोड़ा है ना, जिसे पहनकर तू मेरे पुत्र के साथ बाहर जाया करती थी। तू उसमें अति सुंदर दिखाई देती है। यदि बोआज तेरे दीनहीन वस्त्रों में तुझसे प्रेम करने लगा है तो उस सुंदर वस्त्र में तुझे देख उसका क्या हाल होगा। अतः आज उस वस्त्र को तू पहन ले। मेरे मित्रों, यह विश्वासी का तीसरा चरण है। हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो लिखा है कि वह हमारी धार्मिकता बन जाता है। वह हमारे पाप ही नहीं मिटाता, वह हमें नया जन्म देकर परमेश्वर की संतान ही नहीं बनाता, वह हमें अपनी धार्मिकता ही बना देता है, जिसे धार्मिकता का वस्त्र कहा जाता है। रोमियो के पत्री 3 अध्याय उसके 22 पद में यह बहुत ही उत्तम रीति से कहा गया है, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। मेरे मित्रों, पौलुस इसे एक प्रकार का वस्त्र बताता है जो पापी पर गिरता है कि उसे ढांक दे, जिससे कि परमेश्वर हमें मसीह में देखता है और उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन जाती है। हम उसमें सर्वांगीण खड़े दिखाई देते हैं। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय के 6 पद में कहता है, जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंट मेंट दिया है। आज यही धार्मिकता का वस्त्र उसने हमें भी दिया है। मेरे मित्रों, कई वर्ष पूर्व एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ जिसका नाम द रोप था। मेरी कलीसिया की एक बुद्धिमान ओजस्वी महिला एक रविवार संध्या मेरे पास आई और कहने लगी, मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ, वह एक रोमांचकारी पुस्तक है। मैंने पूछा कि वह क्या पुस्तक है। उसने कहा द रोब, कहने का मतलब है वस्त्र। यह सुनकर मैं निरुत्साह हुआ। उसने पूछा कि क्या मैंने वह पुस्तक पढ़ी है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास यह पुस्तक है परंतु मैंने उसे विस्तार से नहीं पढ़ा है। सच तो यह है कि मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे मित्रों, उसने मुझे अचंभे से देखा और बोली, आपके कहने का अर्थ है कि आपको चिंता नहीं कि यीशु के बागे को क्या हुआ। मैंने कहा, स्पष्ट कहूं तो नहीं, क्योंकि यीशु के उस जोड़ रहित बागे का कोई रोमांचकारी इतिहास नहीं है। सैनिकों ने चिट्ठियां डाली कि देखें वह किसके नाम पर निकलता है, और जिसके नाम पर वह निकला वह एक लंबा चौड़ा रोमी सैनिक होगा। वह एक अर्घ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां मेरे विचार में बहुत गर्म होता है। उसने संभवतः कुछ सप्ताह बाद उसे पसीने से तर करके किसी कोने में फेंक दिया होगा, और एक दासी ने आकर उसे उठाया होगा और नाक बंद करके कूड़ेदान में डाल दिया होगा। वह युवती मेरी बात सुनकर निश्चय ही विस्मित थी। उसने कहा, यह बड़ी भयानक विचार है। कहानी के अनुसार तो उस बागी का बड़ा रोमांचक इतिहास है। मैंने कहा, उस बागी का इतिहास तो रोमांचक नहीं है, परंतु एक बागा ऐसा रोमांचक अवश्य है। यह बागा है धार्मिकता का बागा, जो मसीह उस पर विश्वास करने वाले पापी पर डाल देता है। मेरे मित्र, आप और मैं अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, हम मसीह में ही परिपूर्ण होते हैं। रोमियों की पुस्तक 4:25 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्म में ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया, जिससे कि परमेश्वर के समक्ष खड़े होने के लिए धर्मी ठहरे। तब हम दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 5:21 में देखते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, और इस प्रकार आप और मैं धार्मिकता के बागे में खड़े दिखाई देते हैं। इस बागे का वास्तव में एक रोमांचक इतिहास है। मित्रों, अब हम चौथी बात को देखते हैं जो नौमी रूथ से कहती है। वह है कि वह खलिहान में जाकर बोआज पर प्रकट करे कि वह उसे अपना कुटुंबी छुड़ाने हारा बनाना चाहती है। आइए अब हम देखते हैं रूथ की पुस्तक 3:4 में लिखा है, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जा उसके पांव उघार के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। मेरे मित्रों, आपके और मेरे लिए यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण है। यह एक ऐसा चरण है जो प्रत्येक पापी को लेना होता है। आज कलीसिया में अनेक जन है जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वे कभी खलिहान नहीं गए और मसीह को कुटुंबी मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है? मेरे मित्रों, आपको उसे ग्रहण करना आवश्यक है। धर्मशास्त्र की भाषा में व्यक्त है कि प्रभु यीशु मसीह में या पर विश्वास कर, इस विश्वास को सक्रिय विश्वास होना है। मार्ग के किनारे खड़े सिर हिलाने का विश्वास नहीं, यह एक सक्रिय विश्वास है जो उसे अपना कुटुंबी मुक्तिदाता बनाता है। वह हमारा मुक्तिदाता है। कैसा अनुपम यह उपहार है। हम रोमियो की पुस्तक 6:23 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे मित्रों, मूसा की व्यवस्था में रूथ को बोआज पर कुटुंबी छुड़ाने हारा का अधिकार ही नहीं है, उसे उस पर दावा करना आवश्यक है। यही नहीं, स्पष्ट है कि बोआज उसका कुटुंबी छुड़ाने हारा बनना भी चाहता है। ये घटनाएं जो घट रही हैं, वे यीशु के आगमन और बैतलहम में उसके जन्म की संभावना उत्पन्न करती है। यह युवती अपनी सास की आज्ञा मानेगी और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मित्रों, यह हम आगे चलकर देखेंगे। उसे आदेश दिया गया था कि उस पर दावा करे, उसने उस पर दावा नहीं किया था। अनेक लोग हैं यह तो स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आया, परंतु वे मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार की घटना है कि एक सभा में एक प्रचारक प्रचार कर रहा था और वहां पर कुछ कॉलेज के विद्यार्थी आए हुए थे। उन्होंने उसके पास आकर के कहा कि यह जवान आपसे कुछ बात करना चाहता है। तब उसने पूछा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो उन्होंने बताया कि यह मीटिंग में तो आया है, अर्थात सभा में आया है, परंतु इसने यीशु को ग्रहण नहीं किया है। अतः हम चाहते हैं कि आप इससे बात करें। अतः उस प्रचारक ने पूछा, क्या आप बाइबल में विश्वास करते हैं? उसने कहा, जी हाँ। यह सुनकर वह विस्मित हुआ। तब वह सोच रहा था कि वह अन्य कॉलेज के विद्यार्थियों के समान विवाद करेगा। अतः उसने पूछा, क्या आप नूह के युग में जल प्रलय की कहानी पर विश्वास करते हैं? यह बड़ी निर्बुद्धि की बात लगती है, परंतु उसने कहा कि उसे वह निर्बुद्धि की बात नहीं लगती है। उसने कहा, योना और मछली की बात में तो सर्वथा मूर्खता ही दिखाई देती होगी। उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तब फिर प्रचारक ने कहा, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? उस लड़के ने कहा, जी हाँ। तब उसने सोचा कि यह युवक विवाद करेगा जैसा वे प्रायः करते हैं। तब वह तैयार भी था। उसने पूछा, क्या आप यह भी विश्वास करते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व मसीह यीशु इस संसार में आया था? वह परमेश्वर का पुत्र था और कुंवारी से उत्पन्न हुआ था? तब उस जवान ने कहा, जी हाँ। क्या आप स्वीकार करते हैं कि वह चमत्कार करता था? उसने जवाब दिया, जी हाँ। क्या आप यह भी मानते हैं कि वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा? उसने जवाब दिया, जी हाँ। क्या आप यह भी मानते हैं कि उसका सहदेह पुनरुत्थान हुआ? जी हाँ। क्या आप यह भी मानते हैं कि वह स्वर्ग में चला गया? उसने कहा, जी हाँ। वह तो सब कुछ स्वीकार कर रहा था, ऐसे में क्या किया जाए? व्यक्तिगत प्रचार के अध्ययन में उसे सिखाया गया था कि ऐसे व्यक्तियों से कैसे बात करना है। तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, और उसके मुंह से निकला, नौजवान, क्या आप मसीह यीशु को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता ग्रहण करने को तैयार हैं? उसने कहा, जी हाँ, मैं ग्रहण करता हूँ। यहाँ सच तो यह है कि हम सब उसके साथ बाइबल का विवाद करने का विचार बनाए हुए थे, परंतु किसी ने उसे यह नहीं कहा था कि खलिहान में जाकर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो। और इस युवक ने बड़ी अद्भुत रीति से मसीह को ग्रहण किया। उसने उस खाली सभा गृह में घुटने टेके और मसीह को ग्रहण किया। आवश्यकता इस बात की थी कि वह खलिहान में जाता, और सच तो यह है कि आज ऐसे अनेक लोग हैं, और संभवतः आप उनमें से भी एक हैं। मेरे मित्रों, आप कलीसिया के भी सदस्य हो सकते हैं, परंतु आपने खलिहान में व्यक्तिगत रूप से मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया है? क्या आपने अपने पापों से छुटकारा पाया है? क्या आपने अपने छुड़ाने हारे को जान लिया है? उस पर विश्वास करके आप जान लेंगे कि अंधकार से ज्योति में आना क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं कि नौमी रूत से क्या कहती है। रूत की पुस्तक 3 अध्याय उसके 4 से 6 पद में लिखा हुआ है, और जब वह लेट जाए तब तो उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जा उसके पांव उघार के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। तब वह खलिहान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। मेरे मित्रों, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नौमी ने रूत से जो कहा उसमें अनुचित कुछ नहीं था। पहली बात तो यह है कि यदि यह अनुचित था तो नौमी रूत से ऐसा करने को कभी नहीं कहती। फिर भी इसके आलोचक हैं जो खलिहान और इस नियम को नहीं जानते हैं। रूत के लिए आवश्यक था कि वह उसे कुटुंबी छुड़ाने हारा बनाए, परंतु खलिहान एक सार्वजनिक स्थान होता था। लवनी करने वाले वहां अपने अपने परिवार के साथ उपस्थित थे। नौमी ने रूत से कहा, जब काम समाप्त हो जाए और सब भोजन कर लें और परमेश्वर की स्तुति का समय धार्मिक संस्कार पूरा हो जाए, तब बोअज सोने चला जाएगा। उसका सिर अन्न के ढेर की ओर और उसके पांव बाहर की ओर होंगे। तू जाकर अपना पांव उसके पांव के साथ रखना और उसका बागा अपने पांव पर ही खींचना, तब वह बताएगा कि तुझे क्या करना है। यह सब खुल्लम खुल्ला था, अतः यहाँ अनैतिकता का विचार उत्पन्न होना हमारा अज्ञान है। हम नहीं जानते कि फसल काटने के समय खलिहान का वातावरण कैसा होता था। हम रूत की पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, तब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर राशि के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघार के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि मेरे पांव के पास कोई स्त्री लेटी है। मेरे मित्र, ध्यान दीजिए कि उसे ठंडा लगा तो उसने उठकर देखा कि वहां एक स्त्री सो रही है। हम रूत उसके 9 पद में आगे देखते हैं, उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूं। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने हारा या छुड़ाने वाला कुटुंबी है। मेरे मित्रों, मेरे विचार में यह परमेश्वर के वचन में हमारे पास सबसे मन भावन घटना है। क्या आप जानते हैं कि वह क्या कहना चाहती थी? वह कह रही थी कि मैं तुझे अपना कुटुंबी मुक्तिदाता बनाना चाहती हूँ। यह मेरी अभिव्यक्ति है। इससे उसके सोच बदल गए। मेरे विचार में वह आसमान से जमीन पर गिर गया था, परंतु अब वह प्रसन्न था। सुनिए कि वह क्या कहता है, रूत 3:10 में। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। मित्रों, दूसरे शब्दों में उसके कहने का अर्थ था, जब तुम आई थी तब तुम्हारे मन में पति खोजने का विचार नहीं था, यह तो स्पष्ट है। उस समय तो वह बड़ी शांत और दूर दूर थी, परंतु अब वह बोआज को कुटुंबी छुड़ाने हारा बना रही थी, और विश्वास कीजिए कि वह भी पीछे नहीं हट रहा था। यह कैसी सौम्य रीति से वह कर रही थी। वह चाहती तो उसे मूसा की व्यवस्था के अनुसार वृद्धों की सभा में प्रस्तुत करके खुलकर कह सकती थी, मैं तुम्हें मेरा कुटुंबी छुड़ाने हारा बनाना चाहती हूँ, जो एक वैधानिक विषय बनता, परंतु नौमी ने ऐसा करने का सुझाव नहीं दिया। उसने कहा कि बोआज के विषय में वैधानिकता का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वह तो स्वयं तुम्हारा कुटुंबी छुड़ाने हारा बनना चाहता है। तुम्हें बस उस पर प्रकट करना है कि तुम उससे यह चाहती हो। अतः वह खलिहान जाती है और इस शांत समय रीति से उस पर प्रकट करती है कि वह बोआज को अपना कुटुंबी छुड़ाने हारा बनाना चाहती है। बोआज उसे पत्नी बनाने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। वह तो इसी की प्रतीक्षा में था। मेरे मित्रों, वह तुरंत गतिविधि आरंभ करता है, क्योंकि अब रास्ता साफ है और आगे बढ़ने से उसे रोकने वाला कोई नहीं। रूत ने उसे अपना लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास एक उद्धार करता है और उसके साथ हमारा संबंध प्रेम का है। उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपनी जान दे दी कि हमें छुड़ा ले। मित्रों, यह कैसा अद्भुत अनुभव है कि हमारा उद्धार करता हमारे लिए मर गया। वह हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए जीवित है। अब ध्यान दीजिए कि बोआज क्या कहता है, रूत की पुस्तक 3:11 में। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। मेरे मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप इस परदेशी युवती के सम्मान को देखें, जो सामान्य परिस्थितियों में बैतलहम के समाज में जाति बाहर मानी जाती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार मुआबियों को जाति बाहर रखा जाता था। उसे बता दिया गया था, मुआबी और अमोनी परमेश्वर की प्रजा में प्रवेश योग्य नहीं थे। नौमी ने बैतलहम आने से पूर्व ही उसे समझा दिया था कि वहां उसके पुनर्विवाह की संभावना नहीं थी, परंतु रूत ने अपना विधवा रहना स्वीकार करके नौमी के साथ आना चाहा था। मेरे विचार में नगर की चर्चा ने उसे बड़े ध्यान से उसका आरंभिक निरीक्षण किया होगा। मैं नहीं जानता कि उसके बारे में क्या क्या कहा गया होगा, परंतु यह तो निश्चित है कि अंततः उन्होंने कहा होगा, नौमी की बहू सच में अति सुशील है, वह निश्चय ही हमारे युवकों में से एक को फंसाना चाहती है। परंतु रूत ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके विपरीत उसने बैतलहम में सम्मान अर्जित किया। बोआज कहता है, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। मेरे मित्रों, गांव के सब लोगों ने नौमी की बहू रूत को देखा कि उसका आचरण सही है, और हम इससे पाते हैं कि परमेश्वर ने इस स्त्री को यीशु मसीह के आने के लिए तैयार किया, और हम देखते हैं कि बोआज और रूत आने वाले समय में एक विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, और ये हमारे उद्धार का मार्ग तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से बोआज नौमी के जमीन को छुड़ाने हारा ठहरा, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे पापों से हमें छुड़ाने वाला है, और वह आज से 2000 वर्ष पूर्व पहले इस पृथ्वी पर आया, हमारे पापों के बदले में मर गया, उसने हमारे पापों की कीमत चुका दी, ताकि हम जो उस पर विश्वास करते हैं उद्धार का आनंद प्राप्त करें, अपने जीवन में उद्धार के आनंद को महसूस करें। मेरे मित्र, क्या आज आप उस उद्धार के आनंद को प्राप्त कर चुके हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। नए सिरे से जन्मना आत्मा का जन्म है। अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में आने के लिए प्रभु को स्वीकार करें। वह आपके जीवन को, आपके हृदय को बदलेगा और आपको आशीषों से परिपूर्ण करेगा। मेरे मित्र, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार बोअज रूत को और नौमी को उधार देने का मार्ग बना, अर्थात उन्हें छुड़ाने वाला ठहरा, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए छुटकारा देने वाला है। क्या आज आप उसे अपने जीवन में आने देंगे? यदि हाँ, तो आज प्रभु के लिए अपने हृदय को खोल दें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दें।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414, याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुल घुल के मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा।